आज का प्रातः क्लास है 17 मार्च 1966। गुरुवार को रिकॉर्ड चला है ओम नमो शिवाय। कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, वो तो जरूर परम पिता परमात्मा की ही महिमा गाई हुई है। इसको कहा जाता है क्लियर महिमा, क्योंकि वो रचयिता है देव का, रचयिता है लौकिक माता पिता भी रचयिता है, परंतु वो तो हद के रचयिता है। उनको भी माता पिता कहा जाता है, फिर पारलौकिक को भी ऐसे ही कहा जाता है तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम्ही बंधु सहायक फलाना, इसकी बहुत महिमा है। लौकिक माँ बाप की इतनी महिमा नहीं होती है कि तुम बंधु भी हो सहायक भी हो फलाना फलाना, कुछ भी नहीं। तो अभी ये महिमा किसकी हुई, तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये हुई परम पिता परमात्मा की। उनकी महिमा अलग है, इसलिए जरूर उनमें जो महिमा है शिव बाबा की महिमा कोई थोड़ी नहीं है। शिव बाबा की तो देखो बाप ने बहुत ही समझाया है, बच्चे भी उनकी महिमा करते हैं कि ज्ञान का सागर है। अंग्रेजी में कहा जाता है नॉलेजफुल, उसमें ज्ञान है। परंतु नॉलेज का मतलब कोई ये पढ़ाई नहीं है जो देसी पढ़ाई होती है शरीर निर्वाह के लिए, जबकि ज्ञान सागर कहा जाता है, नॉलेज फुल कहा जाता है, तो जरूर उनमें ज्ञान की नॉलेज बहुत है। क्या चीज का ज्ञान, सारे सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है उसको कहा जाता है ज्ञान। वो सब कुछ तो जानते हैं, ये सारी नॉलेज उनमें है। अभी नॉलेज का अर्थ ही उसका ज्ञान, ज्ञान का सागर। फिर उनको देखो पतित पावन भी कहते हैं। अभी पतित पावन कृष्ण को तो नहीं कहेंगे कोई भी, ना उनको कोई ज्ञान का सागर कहा जाता है। उनकी महिमा तो बिल्कुल न्यारी है। अभी दोनों ही हैं भारत के निवासी, शिव बाबा वो भी तो उनकी महिमा भारत में गाते हैं ना, क्योंकि जयंती भी यहाँ गाई जाती है। अभी 3 जयंती की बात मुख्य है, तो अभी ये प्रश्न उठता है कि पहले किसकी जयंती हुई होगी, शिव की जयंती हुई होगी या श्री कृष्ण जयंती हुई होगी या उनके बाद गीता जयंती हुई होगी। देखो ये बात बच्चों की बुद्धि में रखना होता है, क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं। अब शिव जयंती, कृष्ण जयंती और गीता जयंती, ये मुख्य जयंतियां यहाँ भारत में मानते हैं। उसमें भी कृष्ण की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, बड़े प्यार से मनाते हैं। और शिव की जयंती का कोई पता ही नहीं है, कुछ भी कोई गायन इतना नहीं है। कॉलेज वगैरह बंद, क्योंकि उनकी जयंती, उनकी बायोग्राफी को कि उसने क्या करके किया कोई को भी पता ही नहीं है। उसने क्या करके किया तो बहुत ही चटपटी लिखी बातें लिखी है, गोपियों को चुराया, चीरहरण किया, फलाना किया, उनकी तो ढेर बातें लिखी है। कृष्ण के चरित्रों की तो एक मैगजीन ही निकलती है, तुम देखते हो। यहाँ आती है एक, उसमें कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, सारे ही कृष्ण के चित्र, किसको मारा, किसको क्या किया, गोपियों को फलाना किया। शिव बाबा की कोई मैगजीन है ही नहीं, उनके कोई भी चरित्र का पता नहीं है एकदम। अच्छा अभी दोनों के लिए पता तो भारतवासियों को है नहीं कि बाला शिव जयंती कब, फिर कृष्ण जयंती कब और गीता जयंती कब। अगर कृष्ण जयंती कहते हैं तो जरूर कृष्ण जब बड़ा हो बचपन तो दिखाते हैं कि उनको टोकरी में डाल कर ले गए। कंस के डर से अब गीता तो उस समय में नहीं सुनाएंगे, गीता तो जब वो बड़ा हो गए, कम से कम 9 साल हो गए तब तो गीता सुनावे ना। देखो दिखलाते भी है रथ के ऊपर खड़ा हो करके, तो जरूर वो 16-17 वर्ष का दिखला ही पड़ता होगा। बुजुर्ग बना हो, बड़ा बना हो, तब तो गीता ज्ञान सुना दे ना। तो जरूर गीता भी बहुत समय के बाद सुनाई होगी, ऐसा विचार होता है। फिर अभी शिव ने क्या किया यहाँ, उनका तो पता ही नहीं है बिल्कुल। तो देखो सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, तो बाप आकर के जगाते हैं कि भला मेरी तो कुछ शिव जयंती बता दे कि मैंने आकर के क्या किया। तभी बाप आकर के बच्चों को समझाती हैं कि मुझे ही तो पति तो पावन कहते हैं और मैं जब आता हूँ तो मेरे साथ गीता है, क्योंकि मैं आकर के साधारण बूढ़े तन में जो बहुत अनुभवी भी है गीता वगैरह साथ पढ़े हुए हैं, सत्र की 66 वाणी का दूसरा पेज पीछे रामनवमी तो है ही, सीता वाला राम उसके पीछे हुई उसकी जयंती। क्योंकि इस समय में जो कुछ हो जाता है पीछे उनकी जयंती मनाई जाती है। अभी इस समय में बाप बैठ करके सबको समझाते हैं कि पीछे तो कोई जयंती किसी की होती नहीं है, क्योंकि सूर्यवंशी वर्षा लेते हैं, चंद्रवंशी वर्षा लेते हैं, वहाँ दूसरे कोई की भी आने की या किसी की भी कोई महिमा है ही नहीं, सिर्फ राजा हैं, उनका कॉरोनेशन मनाते होंगे और उनका क्या मनाएंगे। वर्ष में तो सात की होती है, क्योंकि यहाँ आजकल सात की बर्थडे मनाते हैं। चलो सूर्यवंशी राजा ही चली, उसमें दूसरों की कोई महिमा की तो बात ही नहीं है, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। सुख का राज्य सतयुग त्रेता में चलाया, तो अभी ये तुम बच्चों को बैठ करके रियलाइज कराते हैं, यानी समझाते हैं, बुद्धि में ले जाते हैं कि कैसे तुम्हारा राज्य स्थापन हुआ था। कल्प कल्प के समय पर मैं संगम में आता हूँ, क्योंकि मैं आऊंगा भी समय पर। पति तो पावन जो कहे जाते हैं तो संगम ही होता है। कहे जाते हैं पति तो पावन तो जरूर एवर प्योर और एवर इम्प्योर का संगम होगा। कलयुग का अंत, पतित सतयुग की सतयुग पावन, कलयुग पतित, तो कहते ही है ज्ञान का सागर पतित पावन आओ, तो ज्ञान भी देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, में बाप भी हूँ, वर्षा भी जरूर बच्चों को देगा, बरोबार दिया भी था। तो इस समय में कहते हैं तुम बच्चों को वर्षा दिया था, बाप भी कहते हैं बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे मैं आकर के पढ़ाता हूँ समझाता हूँ, और कल पहले माफी बच्चे मेरे बन नहीं है, आ करके मेरे बन करके कल पहले मुआफिक नंबर बार वर्षा कैसे कैसे आते हैं, जैसे आते हैं तैसे इन बच्चों को ये पढ़ाई तो पढ़ना ही है, तो पहले पहले यही समझाना पड़े। गीता की जयंती पीछे नहीं कह सकते हैं, अगर कृष्ण को गीता का भगवान बना दे तो फिर कृष्ण जयंती पीछे बहुत वर्ष के बाद गीता जयंती हो सके, समझ की बात है ना। बात कहते हैं शिव जयंती के बाद फट से है गीता जयंती, ये भी बच्चों को बुद्धि में पॉइंट्स रखनी है ना। एक पॉइंट्स तो देर मिलती है, सब तो कोई की बुद्धि में ऐसे बिगर लिखे या बिगर नोट किए रह नहीं सकते। हाँ, तो कोई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो नोट करते हैं परंतु बाबा को समझते हैं। ये जो बैठ करके रथ है जो नजदीक में है ये भी कहते हैं देखो मैं तो कुछ पॉइंट लिखता नहीं हूँ, अभी मैं खुद भी कहता हूँ, वो भी कहते हैं देखो मैं तो कुछ पॉइंट लिखता नहीं हूँ, सभी पॉइंट सभी समय याद आवे ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुख्य मुख्य पॉइंट कैसे देते हैं, ये एक तो उनको हमेशा दो बाप का बैठकर समझाओ, ये पॉइंट है जो कल पहले देता हूँ वो ही ला करके राजयोग का ज्ञान देता हूँ, योग भी सिखलाता हूँ। योग किस लिए सिखलाता हूँ, क्योंकि अभी ऐसा योग तो और कोई सिखला ही नहीं सकेगा ना। ये है भारत का प्राचीन राजयोग, और किसने सिखलाया देखो, अभी शिव बाबा का तो नाम ही नहीं है तो उसने राजयोग सिखलाया। एक तो कहते हैं गीता वाले कृष्ण ने समझाया सिखलाया, पीछे कोई पतंजलि का नाम लेते हैं, कोई फलाना ऋषि, ऐसे कोई नहीं कहते हैं कि शिव बाबा ने सुनाया राजयोग सिखलाया, क्योंकि कोई को मालूम ही नहीं है। तो बाप बैठ करके अच्छी तरह से बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे ये भारतवासियों का जो भी मिले उनको समझाओ, पहले तो इस बात का ख्याल करो, जयंती का तो ख्याल करो, क्योंकि गायन तो उनका है, सर्व का सद्गति दाता। अंग्रेजी में भी तो कहा जाता है, उनको कहा जाता है लिबरेटर गाइड, तो वहां वापस जाने के लिए गाइड तो चाहिए ना। आत्मा को गाइड के रूप में परमात्मा चाहिए, फिर वो परम आत्मा भी तो है, वो बोलते हैं जैसे मनुष्य का गाइड मनुष्य होता है, ले जाता है यात्रा पर, वैसे आत्मा का गाइड फिर आत्मा ही चाहिए ना। तो अभी वो गाइड कौन सी आत्मा हो सकती है, किसकी आत्मा होगी, तो जरूर सुप्रीम आत्मा होगी। शिव बाबा की ही आत्मा ठहरेगी, बाकी तो जो यहाँ ये मनुष्य हैं वो तो पूरा जन्म लेते रहते हैं, तो यहाँ के यहाँ ही पतित हो जाते हैं, इन पतितों को पावन करके फिर वापस कौन ले जाएगा? तो बाप बैठ करके समझाते हैं, देखो मुझे बुलाते हैं और मैं आता हूँ और आकर के पावन बनने की युक्ति सिखलाता हूँ, तो मुझे याद करो। अभी कृष्ण ने ऐसा तो नहीं कहा है कि मेरी आत्मा को याद करो, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। उसमें लिखा है माम एकम याद करो। अभी देह का संबंध छोड़, वो अपने ही पतित, अपने ही 84 जन्म भोगते रहते हैं, तो देह का संबंध पहले तो उनको छोड़ना पड़े ना। सत्र 366 की वाणी का तीसरा पेज, उन सबको तो अपनी देह है और परमपिता परमात्मा को तो अपनी देह है। तो बाप अभी बच्चों को सनु को बैठ करके कहते हैं ना, अभी तुम्हारी रूहानी यात्रा है, तो रूहानी यात्रा तो रूहानी बाबा ही सिखलाएंगे। उन्हीं को कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर, और स्पिरिचुअल फादर की स्पिरिचुअल नॉलेज यानी रूहानी, बाप की रूहानी बच्चों को नॉलेज। अब कृष्ण को सबका रूहानी बाप थोड़े हुआ, सबका रूहानी बाप तो मैं हूँ, सब मुझे बुलाते हैं, मुझे याद करते हैं, तो मैं ही गाइड बन सकता हूँ। मनुष्य तो गाइड भी नहीं बन सकते हैं, मेरे लिए कहते हैं कि लिबरेटर भी है, गाइड भी है, माइंडफुल भी है, ब्लिसफुल वो भी है, पीसफुल भी है, प्योर भी है, और फुल प्योर है, ऐसे कहेंगे उनको। तुम बच्चों को, आत्माओं को ये नॉलेज दे रहे हैं, इन्हें भी तो नॉलेज इसी शरीर द्वारा दे रहे हैं ना। तुम आत्माओं को भी नॉलेज मिलनी है और शरीर तो तुमको भी छोड़ना है। तुम इस शरीर द्वारा नॉलेज ले रहे हो। बाप कहते हैं कि मैं इस शरीर द्वारा तुम आत्माओं को नॉलेज दे रहा हूँ। इसको ही कहा जाता है बस ये एक ही दफा ऐसी नॉलेज होती है। एक ही दफा देने से बेड़ा पार हो जाता है, वो एक ही दफा देने वाला ठहरा, और वो फादर है जिसको कहा जाता है गॉड फादर, और गॉड फादर का भी रूप बताया बच्चों को, बताया कि जैसी आत्मा है पिचकड़ी बस वो भी है। जो कुदरत है, कुदरत कुदरत गाते रहते हैं ना, बहुत ही गायने से फलाने में, अभी कुदरत बड़ी है तो ड्रामा कैसे बना हुआ है, और जो पार्टधारी पार्ट्स बजाते हैं, एक्टर्स हैं, उनमें जो आत्मा है और परमपिता परमात्मा की भी जो आत्मा है, वो भी उतनी ही बड़ी है, वो छोटी बड़ी नहीं है। ऐसे नहीं कि किसकी छोटी होती है मोटी होती है, नहीं। तो ये है कुदरत कि एक इतनी सी स्टार में ये 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, क्योंकि है बाप को भी जन्म बहुत पार्ट है। क्योंकि जब भक्ति मार्ग हो तभी वो तुम्हारी सर्विस करते हैं। अच्छा, सिर्फ जब सुख में हो तब तो शांत में है, बाकी तुम्हारी आत्मा उनमें तो जैसे कि सबसे जास्ती पार्ट भरा हुआ है 84 जन्म का, और अभी 80 पार्ट। इसको कहा जाता है कुदरत। बस इनका कोई वर्णन नहीं कर सकते। कि लड़ाई बड़ाई कैसे करें, नहीं, इसमें ड्रामा, ये छोटा सा बीज, छोटी सी चीज, वो तो मनुष्य बैठ करके नाटक करते हैं। और ये नाटक आत्मा में कैसे भरा हुआ है, ये कुदरत है। ये जब बात कोई सुनेंगे तो इसमें बहुत बंदर खाते हैं। ये है तो जरूर बरोबर ना, क्योंकि ये ड्रामा भी बरोबर बना बनाया हुआ है और बरोबर आत्मा ही पार्ट बजाती है। आत्मा है भी बिल्कुल स्टार के मिशन, और उसमें यह अविनाशी पार्ट उजा हुआ है 84 जन्म। इस पार्ट में कभी भूल चूक तो हो ही नहीं सकती है, कदाचित भी नहीं। जो भी जिसकी एक्टिविटी है 84 जन्म एक्यूरेट भोगता है। सुख भी 21 जन्म एक्यूरेट वो ही भोगेंगे जिन्होंने कल पहले भोगा है। जो भी जब माया रावण का राज्य आता है तो दुख थोड़ा बहुत जो कुछ भी पार्ट आत्मा में है बजाते हैं, वो भी तो एक्यूरेट पार्ट बजाएंगे ना। तो उसको कहा जाता है कुदरत। और फिर बाप भी एक्टर है, उसकी भी एक कुदरत है कि वो जिसको भी इतना बड़ा बोलते हैं वो भी सिर्फ एक छोटी सी आत्मा, और उनमें ये नॉलेज भरी हुई है जो बैठ करके अभी ये बच्चों को सारी नॉलेज समझाते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी ये बातें देखो नहीं हुई ना, तो नई बात बच्चों को धारण करनी पड़ती है, और मनुष्य तो जरूर नहीं समझ करके यही कहेंगे ये तो इनको पता ही नहीं है, तो कभी शास्त्र वगैरह भी नहीं, तो जरूर विघ्न पड़ेंगे। तो तुम्हारी तो यहाँ बिल्कुल ही नई नॉलेज है, और नई होते हुए भी देखो जिन्होंने कलप पहले सुनी है और अपना वर्षा लिया है वो आस्ते आस्ते वृद्धि को पाते रहते हैं। देखो सेंटर्स तो बहुत खुलते रहते हैं और उन सेंटर्स में नई नई आते भी रहते हैं, टाइम लगता है, परंतु ऐसे मत समझो इस बात को टाइम लगता रहता है कोई बनते ही नहीं है, नहीं बनते ढेर हैं। मैं जो भी इसमें जो भी प्रजा बनती है वो ढेर बनती जाती है, सिर्फ मेहनत है राजाई की, ये राजा बनने के लिए मेहनत है। राजाई की पढ़ाई में बड़ी मेहनत लगती है क्योंकि विश्व का मालिक बनना ये ऊंचे ऊंचे पढ़ाई है, फिर उनका ऊंचे ऊंचे पद भी है और वो संदेश लेने वाले तो फिर प्रजा ही है ना। ये तो राजा मालिक बनना है ना, तुम ये तो समझते हो अज्ञान काल में भी जब मनुष्य बहुत बहुत दान पुण्य करते हैं तब ही राजा के घर में जन्म ले रहे। तो देखो राजा ही का बहुत है, मेहनत की बात है, प्रजा तो बहुत है, तो जरूर ड्रामे में पार्ट फिर अज्ञान काल में भी राजाओं का है जो बहुत दान पुण्य करते हैं तब ही बड़े घर में बहुत पैसा खर्च करते हुए। तो उसमें भी बहुत पैसा खर्च करते होंगे ना, 17-3-6 की वाणी का चौथा पे तो गरीब भी बनता होगा, प्रजा बनता होगा, राजा जाकर कोई बनता होगा, ऐसे मत समझो कि कोई नहीं बनते हैं। समझो कोई भील है बेचारे के पास है थोड़े पैसे और पूरा भगत भी है, क्योंकि ये पूरे भगत होते हैं जिसको रिलीजियस माइंडेड कहा जाता है, वो भी दान पुण्य बहुत करते हैं, उसमें भी जो गरीब होते हैं वो जो अच्छी तरह से दान पुण्य करते हैं, क्योंकि साहूकारों से तो पाप जास्ती होता है, गरीबों से कम पाप होते हैं। तुम देखेंगे ना बच्चे तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तुम देखा है कैसे आगे 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 जाते हैं, कवाटियों में बैठ करके बुढ़ियों को भी कवाटियों में बैठा करके ले जाते हैं। तो श्रद्धा वाले पैदल जाते थे और कोई तो घोड़े और गाड़ियों में भी जाते थे, ऊंट पर भी जाएंगे, क्योंकि गरीबों में श्रद्धा बहुत होती है ना। जो वो गरीब वो थोड़ा भी दान करते हैं और बहुत प्रेम से दान करते हैं, भावना से करते हैं, तो ऐसे जो कोई भी भगत सुनाए गए हैं भक्ति मार्ग में, ये सभी साधारण हैं। क्योंकि भगत होते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, नहीं तो हम गला काटते हैं। तो ये गला काटने वाले सभी गरीब होते हैं। ऐसे गला काटने वाले कोई साहूकार नहीं होते हैं। साहूकारों को तो अपना वो होता है पैसे का, धन का, वो जल्दी ताशी करवट नहीं खाते हैं। हिसाब तो गरीब करते हैं, साक्षात्कार वगैरह सब गरीबों को होते हैं। वो फिर दान पुण्य की जास्ती करते हैं, देवताओं के आगे जाकर सब कुछ दान पुण्य करते हैं। तो फिर वो ही जाकर के राजाएं भी बनते होंगे। क्योंकि पैसे वालों का कोई सुख है ना, उनको तो सुख मिलता ही है, और गरीबों को तो सुख मिले ही कहां से। अभी भक्ति मार्ग में भी गरीब जाकर के दान पुण्य करते हैं तो राजपद पाएंगे। और वो होता तो है एक जन्म के लिए, सो भी अल्पकाल क्षण भंगुर सुख होता है। और यहाँ तो देखो गरीबों को भी मिलता है किस जन्म के लिए सुख, तो भी तुम देखते हो कि गरीब जास्ती है, तो सात पिछाड़ी में आएंगे। जब अभी हिस्ट्री और बाबा जो समझाते रहते हैं कि ये समझना चाहिए कि भारत जो इतना ऊंचा था वो कैसे दुर्गति को पाए हुए, परंतु हुआ क्या जो दुर्गति पाई, कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं हुई, ये इतना गरीब कैसे हो गए, इतना सारा धन मिल्कियत, इतने महल, ये महल कहाँ चले गए। भले वो समझते हैं कि आ चुके कोई योगी उसमें सभी चला गया, परंतु ये अर्थ किए कि भी कैसे हुई, ये क्यों हुई, इसका भी कारण तो चाहिए ना। कारण चाहिए कि रावण का राज्य कब स्थापन होता है। तो जब रावण का राज्य स्थापन होता है तो जरूर हाहाकार होगा, क्योंकि तो ऐसी ऐसी चीजें, सोने के महल आदि तो रह नहीं सकेंगे। आयु तो सभी चीजों की होती है, मकानों की भी आयु होती है ना, मकानों की भी आयु बहुत बड़ी रहती होगी, क्योंकि सोने के मकान कोई खराब तो होते ही नहीं है। चांदी के बनते होंगे। देखो ये ताजमहल है मार्बल का, कितनी उनकी बड़ी आयु होती है। या बड़े बड़े जो मुसलमानों के बने हुए हैं या किसके बने हुए हैं, तो अभी तलक देखो उनकी कितनी बड़ी आयु है, क्योंकि बहुत मजबूत बने हुए हैं। तो सोने के तो और ही मजबूत बने होंगे। ये तो आखिरी में फिर देखो इनकी मरम्मत भी चलती रहती है, पर अच्छी तरह से जो खड़े हुए हैं ना, ये ताजमहल जो है ना, वो ऐसे कोई जाने वाला नहीं है। परंतु ये इनके यादगार भी अभी विनाश हो जाएंगे, क्योंकि ये रहेंगे नहीं। ये तो फिर से बनेंगे अपने ही टाइम पर। तो देखो जब नाटक होता है ना, माँ भी दिखलाते हैं, लड़ाइयाँ वगैरह दिखलाते हैं, मकान टूट फूट जाते हैं, किले विले सब टूटेंगे, तोड़ डालते हैं। फिर आकर के मकान देखो तो फिर वही मकान बने होते हैं। वो ऐसी ऐसी चीजों का जो भी बनाते हैं, उस समय में देखने में जाते हैं, मकान टूटते हैं, ये होता है वो होता है, आकर के देखो तो फिर वही मिले, वही किले, वही बात, वही सब चीज होती है। तो देखो इन नाटक वालों की सारी बनावट ही ऐसी होती है, उनको फिर से बनाना पड़ता है ना, टूटती है तो फिर बनाते हैं। ये भी ऐसे ही है कि जो खत्म हो गए हैं कुछ भी नहीं है। देखो दिलवाला मंदिर में टूटेगा तो फिर बनाना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं होता है, कहाँ से निकल आएगा। तो वैसे ही फिर सब स्वर्ग का समय होगा, तो जैसे कल पहले बनाया होगा ऐसे ही बनाइए। ऐसे तो नहीं है कि साक्षात्कार से बनाएंगे, ये मिस्त्री लोग मकान कैसे बनाते हैं, कोई साक्षात्कार से तो नहीं बनाते हैं। बाकी हाँ ये जरूर है कि बनाएंगे जरूर, ये बनाएंगे वो तुमको साक्षात्कार होता है कि वहां के महल कैसे बने हुए थे। तो भी आगे चल करके तुमको और ही अच्छा अच्छे से साक्षात्कार होगा, ऐसा हमारा विवेक कहता है। ये बात समझ में तो आती है ना, इन बातों से भी तुम बच्चों का कोई ताल्लुक तो नहीं है। बच्चों का ताल्लुक है पूरी पढ़ाई, तो समझते हैं हम पढ़ते ही हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए, तो जरूर स्वर्ग नया बनेगा, नया मकान बनेगा। स्वर्ग पास्ट हो गया है और कोई एक दफा थोड़ा ही पास्ट हुआ है, बहुत टाइम स्वर्ग पास हुआ है और नर्क पास हुआ है, इनकी गिनती ही नहीं। तो अभी नर्क पास हो गया है, स्वर्ग की स्थापना होनी, स्वर्ग और नर्क दोनों पास हो गए। अभी संगम है कि तुम बच्चे जानते हो इस समय में क्या क्या पास हो गया। सतयुग में ये तो नहीं लगा कि पास्ट हो गया है, वहां कुछ ये नाली ही नहीं रहेगी। ये इस समय में की नाली रहती है, जो भी सो भी तुम सिर्फ बच्चों को पूरी नाली है, दुनिया वाले वो भी नहीं है। वो मनुष्य तो जानते हैं बरोबर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग हुआ और ये भी पास्ट हो गया है। कब पास्ट हुआ, कैसे पास्ट हुआ, वो उनको नहीं मालूम है। हाँ, पास्ट हो गया। ये क्यों नहीं उनको मालूम है? जानते समझते हैं कि बरोबर ये पास्ट में पैराडाइज था, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पर वो कब हुआ, कैसे हुआ, वो उनको मालूम नहीं। इसलिए वो कोई समझा नहीं सकते हैं, नहीं तो अगर मालूम होता तो समझा भी सकते। लक्ष्मी नारायण कैसे, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे हुआ, इनको किसने दिया, कोई को मालूम नहीं। अभी तुम बच्चों को मालूम है किसी लक्ष्मी और नारायण को सतयुग में ये राज्य कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त किया, दिया किसने, ये इनहेरिटेंस किससे आया, इनके आगे से ये कुछ भी था नहीं, ये ठिककर ठोबर था, तो ये नारायण ने कैसे पाया। तो देखो ये खुद जाकर के बनाते, यहाँ से पढ़ाई पढ़ करके लायक बन करके फिर वहां बनाने के लिए आगे ही जाकर के आप ही बना देंगे। बैरिस्ट्री वगैरह भी पढ़ते हैं ना, तो जब इनको घर जान बनाना होगा तो आप ही जाकर के बनाएंगे, तो बना हुआ तो उनको नहीं मिलेगा, आप ही बड़े बड़े हॉस्पिटल्स फलाना फलाना बनाएंगे। तुम्हारा धंधा तो अलग है, तुम्हारा धंधा है मनुष्यों को जो घोर अंधियारे में उनको ज्ञान में लाए करके सुजाग करो, उनको रास्ता बताओ, तुम्हारा धंधा ही ये है। कहानी हॉस्पिटल, जैसे बाबा बैठ करके प्यार से सब बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं ये देहवान की तो तुमको दरकार ही नहीं है। देखो इस बाबा को तो देहवान हो ही नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उनकी तो देह ही नहीं है, तुमको देहवान होता है, देहवान होता है इसलिए तुमको देह अभिमानी बनने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। देह अभिमान होने से ही तुम अपनी भी सत्यानाश कर लेते हो तो दूसरे की भी सत्यानाश कर देते हो। देही अभिमानी बैठ करके तुम सारा राज बैठ करके समझाएंगे तो अपना भी कल्याण करते हो तो दूसरों का भी कल्याण हो जाता है। देखो बरोबर, जो यहाँ अपन को देही अभिमानी समझ करके और सारा बाप का परिचय बैठ करके देते हैं, और जैसे बाप कहते हैं बच्चे तुमको गुणवान बनना चाहिए, ये जो तुम्हारा काम है, क्रोध है, फलाना क्रोध है, ये सभी चीजें देह अभिमान की हैं। पहले देहदान आता है, पीछे ये सब विकार शुरू हो जाते हैं। इसको बुरा भला कहना, इससे लड़ना झगड़ना, ये देह की एकदम बहुत नबाबी चलती है। ये देह को तो बाबा बोलते हैं ना, भले राजयोग है, इसमें कोई संशय नहीं है, तो भी तुमको साधारण रहना है, नहीं तो थोड़ी भी चीज से अहंकार आ जाता है। बड़ी चीज पहनते हो तो उसमें भी तुमको बहुत अहंकार हो जाता है। क्यों होता है? अच्छा, घड़ी फैशनेबल न पहनी हो और तुमने दूसरों को देखा, ये तो बड़ी फैशनेबल इनकी घड़ी है, तो देखो किसी की घड़ी देखी और ऐसी घड़ी किसी की सुनी होगी नहीं, तो उनको ये ख्याल रहता है कब ये फैशनेबल घड़ी हमको भी मिले जो हम पहने, तो इसको भी कहा जाता है देहभान। पेन ही देखो, पेन लेते हैं, अभी कितनी अच्छी पेन होगी जो संभाल करके रखनी पड़ेगी, मान लो रुपए डेढ़ बार आने की घड़ी होगी या ये पेन होगा, तो शक्ति की चीज को कोई संभालना पड़ता है क्या? नहीं। अच्छा है, कोई हर्जा नहीं है, तो उसमें मुंह ही नहीं जाएगा। पेन अच्छी होगी संभालना पड़ेगा। अच्छा संभालते हैं, संभालने में फिर पौन पेन में मोह हो जाता है, और उसी समय में अगर शरीर छोड़ दे तो फिर जा करके छी छी बनेगा। फिर भी अंत मते कोई जिस्मानी चीज में ख्याल रखा ना, ध्यान गया ना, कोई जाती है कितना एक दो को लाइना देती है, उसने चोरी की होगी, फलाने की चोरी की होगी, तो ऐसे ख्याल आता है ना। ये देखो, ये ऐसी देहबान की आदतें पड़ी हुई है। मैं तार कर पहन रखूं, मैं फलानी पहन रखूं, ये फलानी चीज है, मैं साड़ी ऊंची पहनूं, ये सभी देह अभिमान है। इनमें फिर ज्ञान की कशिश हो ही नहीं सकती है। फिर ऐसे सर्विस के बदले में और ही डिसर्विस जरूर करेंगे। क्योंकि देही अभिमानी तो नहीं है ना, तो मूल बात है ये जो मरे हैं, पतित बने हैं सुदेहभान के कारण है। रावण ने आकर के देह अभिमानी बना दिया, तो इस समय बड़ा सादा रहना है। देखो ये बाबा है, सादा रहते हैं ना, कहते भी रहते हैं, नहीं तो फिर अहंकार आ जावे। अहंकार गिरता है, गिरा देता है, तो फिर गिरने को छोड़ते ही नहीं है, तो फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में इतना ही कुछ है, देखने में आता है। अच्छा, ओम शांति।